दोस्तों, मेरे काबिले एहतराम बुजुर्गों, नटखट बच्चों, प्यारी बहनों और भाइयों, मैं हूं आपकी मेजबान इरम इमरान और आप समाप्त फरमा रहे हैं इस वक्त रेडियो वेरितास की उर्दू सर्विस। दोस्तों, हमारी आवाज को दिल से कबूल करने का बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे प्रोग्रामों को पसंद करने का बहुत शुक्रिया और जी हाँ, आपके प्यार भरे पैगाम अरसाल करने का भी शुक्रिया। सामईन, आज के प्रोग्राम सुनने से कबल समाप्त फरमा लीजिए हमारे पता जात। दोस्तों, अगर आप हमारे प्रोग्रामों को ऑनलाइन सुनना चाहते हैं तो विजिट कीजिए urdu-veritas-asia.org। और दोस्तों, अगर आप फेसबुक पर हमारे साथ जुड़े हैं तो प्रोग्राम सुनिए और हमारा पेज भी जरूर लाइक कीजिए, जो कि है आरवी उर्दू सर्विस के नाम से। प्रोग्राम सुनिए और जी हाँ, इसे लाइक करना और इन पर कमेंट करना हर किस मत भूलिएगा। यूट्यूब पर हमारा चैनल है आरवी उर्दू सर्विस के नाम से। प्रोग्राम यूट्यूब पर भी आप सुन सकते हैं। हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जो हमारे दोस्त ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हैं, हमें आरवी उर्दू सर्विस से फॉलो कर सकते हैं और प्रोग्रामों से लुत्फंदोज हो सकते हैं। दोस्तों, आज जुमेरात है और आज के रोज आप प्रोग्राम समाप्त फरमा सकेंगे नखमाए सहर और बस्मे दीवान। दोस्तों, आपको बताते चलें कि ये प्रोग्राम फादर कैसर फेरोज की जेर निगरानी तैयार किए गए हैं। तो आइए समाप्त फरमाइए आज के प्रोग्राम।
हमारे खुदावन यस्सु की अंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक उसका 16वां बाब 24 से 28 आया तक। एक दिन यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो वो खुद इनकार करे और अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो ले, क्योंकि जो कोई अपनी जान बचाना चाहे वो उसे खोएगा और जो कोई मेरी खातिर अपनी जान खोएगा वो उसे बचाएगा, क्योंकि आदमी को क्या फायदा है अगर तमाम दुनिया हासिल करे मगर अपनी जान का नुकसान उठाए, या आदमी अपनी जान के बदले क्या देगा? क्योंकि इतने इंसान अपने बाप के जलाल में अपने फरिश्तों के साथ आएगा और तब हर एक को उसके कामों के मुआफिक बदला देगा। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो यहाँ खड़े हैं उनमें से बाज ऐसे हैं कि जब तक अपने इंसान को अपनी बादशाही में आते देख न लें, मौत का मजा ना चखेंगे। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज दोस्तों, आज के कलाम में हमने सुना कि मसीह यीशु ने कहा कि अगर तुम मेरे पीछे आना चाहते हो तो खुद गर्जी की हर ख्वाहिश से इनकार करो, वो रास्ता इख्तियार करो जिसमें मलामत, दुख और मौत है, और मेरे पीछे हो लो, तुम्हें जाती आराम और आसाइशें, माशरती खुशियां, दुनियावी रिश्ते, बड़ी बड़ी तमन्नाएं, मालो दौलत, बल्कि अपनी जान को भी तर्क करना होगा। इस किस्म के अल्फाज हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि हमारे लिए आराम और आसाइश की जिंदगी इख्तियार करना कहां तक जायज है। हम अपने दिल की मादा परस्ती, खुदगर्जी और सर्द मेहरी को किस तरह जायज करार दे सकते हैं? उसके अल्फाज तो हमें खुद इनकारी, ताबेदारी, दुखों और एसारों कुर्बानी की जिंदगी की तरफ बुलाते हैं। अपनी जान बचाने की आजमाइश तो हर वक्त मौजूद रहती है कि हम आराम व आसाइश में रहें, मुस्तकबिल के लिए इंतजाम करें, अपनी पसंद के मुताबिक सब कुछ करें और हर बात में हमारी जात को मरकजियत हासिल रहे, और यही अपनी जान खोने का यकीनी रास्ता है। ये समस्या बुलाता है कि हम अपनी जान उसकी और अंजील की खातिर उंडेल दें, अपनी जान, रूह और बदन उसकी नजर कर दें। वो चाहता है कि हमारा माल और जान उसकी पाक खिदमत में खर्च हो और जरूरत पड़े तो हम दुनिया को हल्का बगोश अंजील करने के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर दें। जान खोने का यही मतलब है और यही जान बचाने का यकीनी रास्ता है। अगर कोई ईमानदार दुनिया भर की दौलत हासिल कर ले तो उसे क्या फायदा होगा, क्योंकि वो अपनी जिंदगी को खुदा के जलाल और खोए हुओं की निजात के लिए इस्तेमाल करने का मौका खो देगा। ये घाटे का सौदा है। हमारी बातें तो उस सारी दौलत से ज्यादा कीमती हैं जो दुनिया पेश कर सकती है। खुदावन को एहसास था कि मेरे नौजवान शागिर्दों में से बाज बेइज्जत होने के खौफ से ठोकर खा सकते हैं। चुनाचे उसने उन्हें याद दिलाया कि जो मेरी खातिर बेइज्जत होने से कतराएगा उसे उस वक्त ज्यादा बड़ी शर्मसारी बर्दाश्त करनी पड़ेगी जब मैं कुदरत के साथ जमीन पर वापस आऊंगा। कैसा जबरदस्त ख्याल है। खुदावन यीशु बहुत जल्द इस दुनिया में वापस आ रहा है। इस दफा पस्ती की हालत में नहीं बल्कि अपने शख्सी जलाल और अपने बाप के जलाल में पाक फरिश्तों के हमरा आ रहा है। ये ताबनाक शानो शौकत का मंजर होगा। उस वक्त वो उनसे शर्माएगा जो अब उससे शर्माते हैं। काश उसके ये अल्फाज हमारे दिलों में उतर जाएं कि जो कोई इस जनाकार और खताकार कौम में से मुझसे शर्माएगा इस गुनाह भरी और बेवफा दुनिया में उस बेगुनाह निजात दहिंदा से शर्माना कैसी नामोजू बात है।
अदाबस दोस्तों, दुआएं मोहब्बतें और नेक तमन्नाएं कबूल कीजिए। दोस्त मैं हूँ आपकी मेजबान इरम इमरान और मेरे साथ हैं जी अंकल दीवान। पेशे खिदमत है आपका अपना और पसंदीदा प्रोग्राम बसने दीवान।
सुनाइए सामीन, कैसे हाल अहवाल हैं आपके भाई? उम्मीद करते हैं कि आप सब खुदावंद के फजलो करम से ठीक ठाक होंगे। हैं जी, हमारी दुआएं और नेक तमन्नाएं कबूल कीजिए।
और दोस्तों, हम आपसे यही कहेंगे कि मौसम जो है अब तब्दीली की जानेब रवां दवा है, तो बदलते मौसम में अक्सर और बेशतर दोस्तों की सेहत जो है वो मुतासिर हो जाती है। तो हम आपसे यही कहेंगे अपना भी ख्याल रखिए और कोशिश कीजिए कि दूसरों का भी खास ख्याल रखें।
हाँ जी बिल्कुल, और अपनी सेहत का, और कहते हैं वैसे भी कहते हैं कि सेहत है तो सब कुछ है। हैं जी, सेहत जो है वो हजार नेमत है और जान है तो जहान है, इसलिए हमेशा अपनी सेहत का ख्याल रखें और दूसरों की सेहत का भी जरूर ख्याल रखें।
अंकल, अपनी सेहत का तो ख्याल रखा जा सकता है, लेकिन आजकल लोगों के नखरे इतने बढ़ गए हैं कि आप दूसरों की सेहत का ख्याल नहीं रख सकते।
और नहीं रखना तो चाहिए ना, लेकिन जैसे हम कहते हैं कि सामीन अपने खुश रहिए और दूसरों की खुशियों का ख्याल रखिए, लेकिन कई दफा ये होता है कि मौसमी असरात की वजह से बीमार होता है बंदा।
जी जी।
और कई दफा वैसे भी जिंदगी में कुछ हादसा पेश आ जाते हैं ना।
सही कह रहे हैं कल।
वो एक बंदा था ना,
हाँ हाँ।
वो चला गया डॉक्टर के पास, सर में उसके चोट लगी हुई थी।
अच्छा।
तो डॉक्टर ने नर्स को कहा भाई इसकी मरहम पट्टी कर दो।
डॉक्टर ने कहा कि मरीज ने कहा?
ओहो, डॉक्टर ने नर्स को कहा कि मरीज की मरहम पट्टी कर दो।
अच्छा अच्छा।
हैं जी।
हाँ।
नर्स मरहम पट्टी कर रही थी तो उसने पूछा भैया आपका नाम क्या है?
हाँ।
उसने कहा जी मेरा नाम जाहिद है।
अच्छा।
कहते नर्स ने कहा अच्छा तुम्हारी उम्र कितनी है?
हाँ।
उसने कहा जी 30 साल है।
अच्छा।
तो नर्स कहने लगी अच्छा तो मुझे ये बताओ कि तुम शादीशुदा हो? तो मरीज जल्दी से कहता नहीं नहीं जी, मैं तो ये तो दरअसल कार से टकराने की वजह से मुझे चोट लगी है। तो कई दफा ऐसे हादसा भी जिंदगी में पेश आ जाते हैं।
हाँ अंकल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। खैर ये तो मजाक की बात ही, लेकिन अगर अंकल हम हकीकी जिंदगी में झांके तो बहुत सारे मसाइल हैं। अच्छा अंकल, एक बात आपसे मतलब पूछनी भी थी कि हर साल के इख्तिताम पर बहुत ज्यादा ना ऐसे फौतगियां होना शुरू हो जाती हैं, और खासतौर पर साल के आखिर में या जनवरी के में जब साल का आगाज होता है तो बुजुर्ग जो हमारे होते हैं ये इस सर्दी को सह नहीं पाते हैं, तो आमतौर पर मतलब वो इस जहाने पानी से रखलत फरमा जाते हैं। लेकिन अंकल मजाक के तौर पर अगर देखा जाए तो बहुत से दोस्त जो है मजाक इस चीज को लेते हैं और कहते हैं जी कि खुदा के घर में जो है ना वो वाइंड अप हो रहा है साल का, इसलिए बुजुर्ग जो है वो चलते जा रहे हैं।
जहरी सी बात है, अब जब होता है ना ये साल का एंड होता है,
हाँ।
तो आपने देखा होगा कि गाड़ियों के चलान भी ज्यादा होते हैं।
बिल्कुल।
हैं जी। उसके
तो
साथ साथ जो है ना मतलब दूसरी अशय खुर्दो नोश की कीमतें भी एकदम से बढ़ना शुरू हो जाती हैं।
सही बात।
हैं जी। बैंकों में हाँ। चले जाएं तो बैंकों ने भी दरवाजे नीचे किए होते हैं जी, हम अपनी क्लोजिंग कर रहे हैं। تو اسی طرح یہ کلوزنگ کے ٹائم پہ جو پچھلے رہ گئے ہوتے ہیں نا باقی بچے ہوتے ہیں ان کا پھر کھاتا کلیئر تو کرنا ہوتا ہے نا. ویسے ہم تو یہی دعا کرتے ہیں کہ خداون تعالیٰ ان سب کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے. ہاں جی یہ زندگی ہزار نعمت ہے اور کئی لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کی مطلب ادھر بڑھ نہیں رہی ہوتی زمین پہ کسی کے ساتھ, تو وہ پھر کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے بھائی نکلو ادھر سے. ہے جی کئی لوگوں کی نہیں بڑھتی نا, آپس میں بھی نہیں بڑھتی.
نہیں انکل بنے یا نہ بنے موت کسے اچھی لگتی ہے انکل, سب موت سے ڈرتے ہیں.
ہاں جی بالکل بھائی یقین جانو. ویسے تو لطیفہ یہ مائیں تو ٹھنڈی چھائیں ہوتی ہیں
جی جی, جی
لیکن وہ کئی دفعہ یہ بھی ہوتا ہے نا کہ کوئی بوڑھی سی ماں تھی نا,
اچھا
تو اس کا ایک بیٹا تھا جی وہ بیمار ہو گیا,
اچھا
تو کہتی رہنا اس نے کہتی رہنا میرے پتر کی آئی مجھے آ جائے, میرے پتر کی آئی مجھے آ جائے. بس جبرائیل فرشتہ آ گیا اس کی طرف,
اچھا
جب اس نے جبرائیل فرشتے کو دیکھا تو کہتی میرے پتر کا کمرہ تو ساتھ والا ہے ادھر کہاں آ گئے ہو. لیکن مائیں تو دیکھیں نا ٹھنڈی چھائے ہوتی ہیں جی.
انکل جبرائیل فرشتہ کیوں اس کے پاس آیا؟
وہ جان لینے ہی آیا تھا اور کیا.
جان لینے والا فرشتہ تو کوئی اور ہے.
چلو ٹھیک ہے جو سا بھی فرشتہ بھائی جان لینے والا فرشتہ آ گیا ہے جی.
اچھا اچھا میں سمجھی شاید کہ کوئی پیغام دینے آیا ہو. خیر انکل ظاہر سی بات ہے کہ سردیاں تو بڑی ہیں, پھر ایک مرتبہ اسی بات کی جانی باتیں ہیں کہ گھر کے تمام افراد کا جو ہے وہ خیال رکھے. سردیاں بہت زیادہ بڑھ چکی تھی لیکن اب تو موسم کافی کنٹرول میں ہے اور صحیح خوشگوار موسم ہے.
ہاں جی بالکل, اور اس کو کہتے ہیں بسنتی موسم ہے جی. آج کل تو خیر وہ پتنگے شتنگے اڑانے والا موسم ہی ختم ہو گیا ہے.
بالکل
نہیں تو پہلے دور میں پتنگے اڑایا کرتے تھے, بو کاٹا کی آوازیں آیا کرتی تھی.
لیکن انکل ایک طرح سے تو اچھا ہوا, چلے تہوار جو ہیں وہ بہت سی خوشیاں لے کر آتے ہیں یہ تو بات حقیقی ہے, لیکن انکل اگر اس تہوار سے بہت سی جانوں کا نقصان ہو رہا ہے تو بہتر نہیں کہ اس تہوار کو نہ منایا جائے؟
ہاں جی بالکل, اور ہم اپنے رویوں کو بہتر کر کے اس تہوار کو بہتر انداز میں بھی منا سکتے ہیں. ہاں جی مسئلہ یہ ہے نا کہ اگر بس میں بیٹھنے سے کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو بہتر اس نے بس میں بیٹھنا چھوڑ تو نہیں دینا نا. ہاں
جی
مسئلہ یہ ہے کہ اس ڈرائیور کو سکھاؤ کہ بھائی بس کس طرح چلانی ہے, یا موٹر سائیکلوں پہ سویرے شام ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں, حادثے ہوتے ہیں.
صحیح,
تو اب ظاہری سی بات ہے موٹر سائیکل چلانے چھوڑنے سے بہتر ہے کہ موٹر سائیکل چلانے والوں کو یہ صلاح مشورہ دیا جائے کہ بھائی یہ شیطانی چرخا ہے دو پہیوں پہ چلتی ہے, تو بہتر ہے کہ اس کو تھوڑا محتاط انداز میں چلا لو.
صحیح کہہ
رہے ہیں. اسی طرح بسنت کا مسئلہ ہے جی کہ بسنت چلو ایک تہوار تھا, خیر اب تو ہماری زندگیوں سے وہ تہوار تقریباً ختم ہی ہو چکا ہے.
بالکل صحیح,
لیکن بہرحال چلو ختم ہونا بھی اس کا ایک لحاظ سے بہتر تھا کہ اس سے واقعی بہت زیادہ جانی اور مالی نقصان ہونا شروع ہو گیا تھا.
صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن یہ اچھی بات ہے کہ جیسے یہ بسنتی موسم آتا ہے تو نئے نئے پھول کھلتے ہیں اور پھولوں کی نمائش جو ہے وہ لگتی ہے مختلف باغات میں. تو انکل آپ کبھی گئے ہیں ایسی نمائش دیکھنے کے لیے؟
آئے ہائے لو دسو, مجھے پھولوں سے تو ویسے ہی بہت پیار ہے.
کیا بات ہے. اچھا انکل آپ اکیلے دیکھنے جاتے ہیں یا پھر ہماری آنٹی کو بھی لے کر جاتے ہیں ساتھ میں؟
نہیں نہیں مسئلہ یہ ہے کہ وہ بھی کبھی کبھار ساتھ چلی جاتی ہے.
کبھی کبھار؟ اچھا انکل چلو آپ کی اس کبھی کبھار کو بھی ہم مزید وضاحت کے ساتھ دوستوں کے سامنے پیش کریں گے.
کیا کرنا ہے جی؟ کبھی کبھار میں نے کہا وہ چلی جاتی ہے میرے ساتھ, تو میں کون سا سویرے شام پھولوں کی نمائش دیکھنے چلے گا؟
تو
میں بھی کبھی کبھار ہی جاتا ہوں.
اچھا انکل ابھی پروگرام میں وقت ہے وقفے کا, اس کے بعد میں آپ سے پوچھتی ہوں. دوستوں کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. دوستی ریڈیو ویریتاس ایشیا کی اردو سروس ہے اور اس وقت آپ پروگرام سماعت فرما رہے ہیں بس میں دیوان جی. تو دوستو وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر سے آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. اور جی انکل پھولوں کی نمائش کی بات ہو رہی تھی اور آپ کہہ رہے تھے کہ آپ کو پھولوں سے بہت زیادہ پیار ہے, اس لیے جب بھی نمائش لگتی ہے آپ ضرور جاتے ہیں اور ہماری آنٹی کو کبھی کبھار لے کر جاتے ہیں.
اور میں نے یہی کہا تھا کہ میں جاتا ہوں تو انٹی کو بھی, یعنی کہ اپنی زوجہ محترمہ یعنی کہ بیگم صاحبہ یعنی کہ تمہاری انٹی کو کبھی کبھار لے کے جاتا ہوں, تو میں خود بھی کبھی کبھار ہی جاتا ہوں. وہ مسئلہ یہ ہو گیا نا کہ بچہ گھر آیا نا,
اچھا
تو بڑی روحانسی صورت اس نے بنائی ہوئی تھی،
ہاں
جی، رونے والا منہ بنایا ہوا تھا
جی۔
تو ماں نے پوچھا بیٹا کیا ہوا ہے، کہتا ہے امی دو سوال غلط ہو گئے ہیں۔
اچھا،
تو اس نے کہا اس میں کون سی بات ہے، دو سوال غلط ہو گئے ہیں، پھر کیا باقی تو صحیح ہوئے۔ کہتا نہیں میں نے کیے ہی دو تھے۔ کیسا ہے؟
صحیح ہے انکل۔ اچھا چلیے انکل، آج نا میں آپ کو ایک نئی دریافت کے بارے میں بتاتی ہوں۔ نئی دریافت کیا، نئی ایجاد کے بارے میں بتاتی ہوں۔
ہاں جی بالکل، نوی نوی ایجادات ہو رہی ہیں جی۔
اوہو انکل، نیٹ کھول لیں تو میں بتا نہیں سکتی کتنی کتنی اور حیرت انگیز ایجادات جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں۔
یقین جانو میں نے تو ایک دفعہ نیٹ کھولا تو اس میں 40-50 مچھیاں پھنسی ہوئی تھی۔
انکل آپ دوسرے نیٹ کی بات کر رہے ہیں، میں انٹرنیٹ کی بات کر رہی ہوں۔
ہاں انٹرنیٹ بالکل صحیح ہے، اس پہ واقعی بڑی خبریں ہوتی ہیں بھائی۔
اور آپ نے نیٹ کھولا تو مچھیاں کیسے آ گئی؟
وہ ظاہری سی بات ہے بھائی، میں نے دریا میں نیٹ پھینکا ہوا تھا، اس میں مچھیاں ہی آنی تھی اور کچھوک میں ہونے تھے۔
شکر ہے آپ کے نیٹ میں مچھر نہیں پھنسے ہوئے تھے۔
شاباش۔
اچھا انکل سنیں، گھریلو برقی آلات کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک بڑا ہی سمارٹ اور جدید طریقہ سامنے آیا ہے، اور ایک ایجاد ہے جس کا نام رکھا گیا ہے تھینک یو۔
ہیں
تھینک یو؟
شاباش، تھینک یو کو کہیں نہ چھوڑنا ہے جی، جو بھی بات ہو تھینک یو ضرور کہہ دینا ہے۔
انکل یہ تو آداب میں آتا ہے، لیکن یہ جو آلہ تیار کیا گیا ہے جو کہ گھریلو برقی آلات کو کنٹرول کرتا ہے، اس کا نام بھی تھینک یو رکھا گیا ہے۔
ہاں جی بالکل، یقین جانو کسی بندے کو اچانک بھی اتنا تھینک یو بولتے ہیں نا، کئی دفعہ اچانک بھی منہ سے نکل جاتا ہے۔ تو کسی کنجوس بندے کے گھر دعوت پہ گئے ہو نا، تو وہ پوچھ لے جی چائے پینی ہے، تو اچانک بھی منہ سے نکل جائے تھینک یو، تو وہ کہتے چل ٹھیک ہے پھر باہر چل کے اپنے گھر جا کے پی لیں پھر، ہے جی۔ تو یہ تھینک یو کو بھی بڑا کنٹرول کر کے رکھنا پڑتا ہے، لیکن یہ ایک تھینک یو اور ایک سوری
جی،
ہاں جی یہ تو یقین جانو کسی کا سر کھول دو، کسی کے کھنے سیک دو، بعد میں بس اتنا ہی کہنا سوری ہے جی۔
صحیح ہے نا انکل، لفظ ہی ایسا ہے کہ مطلب اس کے بعد کوئی شخص غصہ نہیں کر سکتا۔
ہاں جی ظاہری سی بات ہے، غصہ کیوں کرنا ہے۔ تو میں تو کہتا ہوں کہ یہ تھینک یو کے ساتھ ساتھ سوری بھی کوئی ایجاد کرنی چاہیے۔
ویسے آئیڈیا اچھا، چلے دیتے ہم بھی سائنسدانوں کو۔ یا انکل آپ خود کیوں نہیں کوشش کرتے ہیں؟
شاباش، میں نے مطلب سوری کیا ایجاد کرنا ہے؟
نہیں کوئی آئیڈیا تو دینا کہ سوری پہ کیا ایجاد ہو سکتا ہے، اس طرح سائنسدان یا جو اس ایجادات پر کام کر رہے ہیں ان کے لیے تھوڑی آسانی ہو جائے گی۔
یہ ہمارے فون شون نہیں ہے، اس پہ جب بیلنس ختم ہوا ہوتا ہے تو ایک بی بی بولتی ہے،
ہاں ہاں بالکل،
کہ آپ کا جو بیلنس ہے وہ ناکافی ہے، اس لیے آپ اپنے مطلوبہ نمبر پہ کال نہیں کر سکتے۔
جی جی،
اس میں ٹائم بڑا ضائع ہو جاتا ہے۔ تو میں تو اس بی بی کو مشورہ دوں گا کہ جب کوئی ایسی بات ہو نا تو آگے سے صرف اتنا بول دے سوری، سارا مسئلہ ہی حل ہو جائے۔
نہیں تو انکل اگر وہ پوری بات کرے گی تو اچھی بات نہیں ہے، ساتھ بیٹھے کو بھی سنائی دے گا۔
وہ پوری بات کرنے کی ضرورت کیا ہے، اگلے بندے کو پتا چل جائے گا کہ میرے فون کی اوقات کتنی ہے یا میرے بیلنس کی اوقات کتنی ہے۔ اور ویسے بھی آج کل تو مختصر سے مختصر بات کرنے کا رجحان جو ہے نا وہ بڑھ رہا ہے۔ وہ کسی دوست تھا میرا، اس نے نا مچھلی کی دکان ڈال لی،
اچھا
تو وہاں پہ اس نے لکھ دیا یہاں ہر وقت تازہ مچھلی دستیاب ہے۔
اچھا
اب ایک بندہ آیا وہ کہتا ہے یار یہ یہاں کا کیا مطلب ہے، جگہ تو سب کو سامنے نظر آ رہی ہے تو پھر یہاں لکھنے کا کیا فائدہ ہے۔ اس نے مٹا دیا، اس نے لکھ دیا ہر وقت تازہ مچھلی دستیاب ہے۔
اچھا ٹھیک ہے۔
ایک اور دوست آ گیا، اس نے کہا ہر وقت لکھنے کی کیا لوڑ ہے بھائی، ہاں جی مسئلہ یہ ہے کہ جب تم نے بیٹھے ہونا ہے تب ہی مچھلی بیچنی ہے نا، جب بند ہونی ہے تو پھر کان بیچنی ہے۔ اس نے وہ بھی ہٹا دیا۔ ایک اور آیا بعد میں رہ گیا تازہ مچھلی دستیاب ہے، تو اس نے مطلب کہا یار یہ جو تازہ لکھا ہوا ہے نا اس سے بندے کے ذہن میں شک آتا ہے کہ پتہ نہیں باسی مچھلی بھی یہ رکھتا ہے، تو یہ تازہ بھی ہٹا دو۔ تو آگے رہ گیا مچھلی دستیاب ہے، ایک بندہ اور آ گیا، اس نے کہا یار سامنے مچھلی پڑی ہوئی ہے پھر مچھلی کا نام لکھنے کی کیا ضرورت ہے۔ اس نے وہ بھی مٹا دیا، اینڈ پہ بس یہ رہ گیا کہ دستیاب ہے۔ تو اس طرح مختصر بات کرنے کا بھی بڑا نا شوق ہوتا ہے کئی لوگوں۔
صحیح 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 کہہ رہے ہیں۔
تھینک یو والی بات کرو، وہ کیا تھا بھائی تھینک یو شینک یو؟
جی جی اچھا انکل، مطلب ایک سال ہو گیا انٹرنیٹ ریفریجریٹر جو تھا وہ متعارف ہو چکا ہے، لیکن اس کے باوجود اسے
کون سا ریفریجریٹر
انکل؟ انٹرنیٹ ریفریجریٹر۔
شاباش، انٹرنیٹ ریفریجریٹر، میرے تو घर में वो जो इंटरनेट के लिए कंप्यूटर है वो तो बड़ा छोटा है, तो हम तो पूरी वो साग वाली हांडी रखते हैं फ्रिज में, तो वो उसमें कैसे रखेंगे बंदा पूछे।
अरे अंकल, इसके बारे में भी ना तफसील से जरूर किसी प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे और अपने दोस्तों को भी बताएंगे। फिलहाल बात शुरू हुई है थैंक यू की, तो ऐसा ना हो कि थैंक यू वाली जो मालूमात है वो रह जाए और वक्त जो है खत्म हो जाए।
नहीं, ये इंटरनेट वैसे ही बड़ी अजीब सी बीमारी है, इसकी समझ भी नहीं ना आती। वो किसी बंदे को ना एक अमरीकी सरदार ने कहा, भाई इधर तो बड़ी सहूलत है, अब ये देखो ना,
अच्छा
अब हमारे मुल्क में तो शादी जो है ना वो ईमेल से भी हो जाती है।
ईमेल से शादी?
हाँ जी।
वो कैसे अंकल?
ईमेल करो तो उधर से ईमेल आए तो शादी हो जाएगी ना। तो मेरे जैसा कोई आगे अनपढ़ आदमी था, वो कहता है यार हमारे मुल्क में ये सहूलत अभी मैसर नहीं है, यहाँ से तो हर बंदे को फीमेल से ही शादी करनी पड़ती है। तो इस तरह ये इंटरनेट जो है ना बहुत सारी गलत फहमियां भी फैलाता है।
सही कह रहे हैं अंकल। अच्छा अंकल, चले बात हो रही थी थैंक यू की, तो मैंने बात का आगाज किया था इंटरनेट रेफ्रिजरेटर का, तो एक साल हो गया इसको मुतारिफ हुए भी, लेकिन अभी तक इसे सार्फिन में मकबूलियत हासिल नहीं हो सकी है। इस तरह के बहुत से दीगर स्मार्ट घरेलू आलात हैं जो कि जदीद टेक्नोलॉजी से होने के बावजूद लोगों में आम नहीं हो रहे हैं। इनकी वजह यह है कि आलात का मरकजी कंट्रोल नहीं होता है। ताहम कोरिया की बर्की मसनूआत बनाने वाली कंपनी के माहरीन ने यह उम्मीद जाहिर की है कि वो बहुत जल्द इस सूरत हाल पर काबू पा लेंगे। अब थोड़े ही अरसे की बात है कि एक इलेक्ट्रिक शो में एक इसी कंपनी में इस बात को मद्देनजर रखते हुए ऐसा आरा मुतारिफ करवाया गया है जो घर के तमाम स्मार्ट बर्की आलात से राबता करके इन्हें कंट्रोल करने के लिए एक मरकजी निजाम बनाएगा।
वेरी गुड, जो मतलब ये अपनी वफाकी कबीना बना लेगा कि भाई फलाने सूबे को भी कंट्रोल करना है, फलाने सूबे को भी, फलाने सूबे को भी।
बिल्कुल,
वेरी गुड।
और ये एक सीनियर कह लें कि स्मार्ट होम डिवाइस होगी।
वेरी गुड। ये जो है ना अब सीनियर जूनियर का जो सिलसिला है ना वो भी बड़ा मसला बन गया है। अब देखो ना, अक्सर हमारा भी तो झगड़ा रहता है ना
जी,
के तुम साबित करने की कोशिश में लगी रहती हो कि तुम सीनियर हो।
क्या मतलब अंकल?
हालांकि यकीन जानो मैं तो सीनियर सिटीजन होने को आ गया हूँ। तो
अंकल आप उम्र के लिहाज से कहते हैं, मैं तजर्बे के लिहाज से कहती हूँ।
तो आप उम्र से पहले ही तजर्बे हासिल करना शुरू हो गई थी। तजर्बे भी उम्र के साथ ही होते हैं, ऐसी बात नहीं है। और वैसे भी सीनियर सिटीजन जो होते हैं ना उनके साथ जो है वो अदबो अदाब के दायरे में रह के बात करनी चाहिए।
अंकल तो मैं अदब के दायरे में नहीं रहती, मुझे ये बताया।
नहीं चलो ठीक है, ये खाली आप कह के तो आप ही तो अदब नहीं ना होता है जी। वो कई बात हो रही थी ना अदब की, तो एक बंदा उठ के आगे कहते हैं जी सबसे अच्छा अदब जो है ना वो तो अंग्रेजों ने तख्लीक की है।
अच्छा,
उसने पूछा वो कैसे? कहते है यार तुम लोगों को टाई पैंट नहीं सिखा दी, तुम लोगों को पेंट कोट पहनना सिखा दिया, इससे बड़ा अदब और क्या होगा। तो उसको अदब का पता ही नहीं था कि अदब दरअसल लिटरेचर की बात होती है।
अच्छा दोस्तों, प्रोग्राम में वक्त हुआ चाहता है एक छोटे से वक्फे का, कहीं मत जाइएगा, हम अभी हाजिर होते हैं। दोस्ती रेडियो वेरिता से शकी उर्दू सर्विस है और इस वक्त आप प्रोग्राम समाप्त फरमा रहे हैं बज़्मे दीवान जी। तो दोस्तों आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं एक नई ऐजाद की जिसका नाम है थैंक यू, और घरेलू बर्की आलात को कंट्रोल करने का ये एक स्मार्ट जरिया है। जी अंकल, इस ऐजाद के साथ साथ बहुत सी सहूलियात भी दोस्तों को मिली हैं। वो इस तरह के जितने भी घरेलू बर्की आलात हैं जैसे कि फ्रिज हो गया है, टीवी हो गया, अपने मोबाइल फोन जो हो गए जब वो चार्जिंग पर लगाए जाते हैं, इसके अलावा और बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि बिजली से चलती हैं, तो इन सबको ये कंट्रोल करता है।
हाँ जी बिल्कुल, वेरी गुड, ये बहुत अच्छा कंट्रोलर है जी। जैसे एग्जामिनर होता है ना, एग्जाम कंट्रोलर होता है। तो ये घर में मतलब अगर टीवी चल रहा होगा तो टीवी चला के कई लोग सो जाते हैं, तो इसको बंदा जगा दे कि लै भाई जब हम सो जाए ना तो बाद में अगर टीवी चलता रहे तो उसको बंद भी करना है।
नहीं अंकल, ये पता है किस तरह काम करता है?
ये किस तरह काम करता है?
ये इस तरह काम करता है कि ये आलात जितने भी बरकी होते हैं ना, उनको कंट्रोल करने में मामनत करने के साथ साथ एक तो मामनत करता है कि वो अलार्म बजा देता है, दूसरा ये होता है कि इन तमाम चीजों के बारे में ये मालूमात जमा करके इसे सारिफ के स्मार्टफोन के साथ शेयर कर सकता है, यानी कि इसको बता देता है कि भाई ये इस हद तक जो है इस्तेमाल हो रही है बिजली घर में ना, या
अच्छा,
कि आप
अच्छा।
जैसे आपने कहा कि आप सो गए और बिजली जो है वो चल रही है, टीवी चल रहा है, या
तो ये अलार्म बजा देगा
जी। अच्छा,
ये तो टेंशन वाली बात ही है ना। फिर मैं तो एक घड़ी के अलार्म से तांग हूँ, एक घड़ी का अलार्म, दूजा मेरी बेगम यानी कि सोजा मोहतरमा का अलार्म,
अंकल
वो भी सवेरे सवेरे शुरू हो जाती है, दीवान 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 उधर से आवाज आ रही होती है घड़ी के, टर्न 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 उधर से दीवान दीवान की आवाज आ रही होती है।
शुक्र गुजारी तो कभी हो नहीं ना सकती आप में ना। देखे वो आंटी आपको उठाती रहती है उठाती रहती है, अगर ना उठाएंगी तो क्या होगा, आप काम से देर नहीं हो जाएगी आपको?
शाबाश, एक नींद ही तो होती है जो अपनी होती है। वो बच्चा भी बेचारा कोई अपने पियो से ना गिला कर रहा था।
अच्छा,
कहता है क्या है मेरे दोस्त है उनके वालदैन जो है ना, जो वो कहते हैं वो उनको ला देते हैं।
अच्छा
जी, जो वो उनको कहते हैं वो उनको मुहैया कर देते हैं। एक आप है कि हमें मतलब नींद भी जो है वो सही तरह से लेने नहीं देते हैं जी। तो नींद ही तो अपनी होती है, बंदा सो रहा होता है और कई यकीन जानो कई तो अस्पतालों में जाके भी नींद नहीं आती।
तो अंकल अस्पताल कोई सोने की जगह?
और नहीं तो जब बंदा जाता है तो बीमार होता है तो उसको आराम करेगा, वो तो नींद आएगी उसको तो फिर ही आराम आएगा ना। वहाँ की नर्सें बड़ी अजीब होती है ना, चंगा भला बंदा सोया होता है उसको उठा के कह रही होती है नींद की गोली खा लो।
अंकल ये लतीफा कभी घर में भी सुनाइएगा।
शाबाश है। तुम्हारा मतलब है मैं फिर नींद की गोली ना खाऊंगा, मैं फिर बाहर ही मतलब रात गुजारा करूंगा है जी।
फिर आप जहर की गोली खाएंगे अंकल।
शाबाश है, कर लो बातें।
अच्छा अंकल थैंक यू के हवाले से मैं, अंकल थैंक यू नहीं, थैंक यू जो स्मार्ट
चंगा पड़ा अंकल, दिमाग चल रहा था अंकल थैंक यू शुरू कर दो।
नहीं थैंक यू जो बल्कि हालात को कंट्रोल करने वाला स्मार्ट जरिया है उसके हवाले से थोड़ी सी मालूमात और दोस्तों को बता दें। दोस्त इसकी अहम बात यह है कि ये किसी भी कंपनी के हालात के साथ बासानी इस्तेमाल किया जा सकता है। और
जैसे हमारी ये सब्जी होती है आलू होते हैं
जी,
जेड़ी मर्जी सब्जी में डाल लो अपना मजा वो पूरा देते हैं
जी,
है
जी,
जी। तो ये आलुओं से मुझे याद आ गया, ये सब्जी फरोश भी बड़े अजीब होते हैं
जी।
वो बीबी लेने चलेगी ना सब्जी,
हाँ।
तो बार बार वो भाई जो है ना वो सब्जी वाला,
हाँ।
पानी के छींटे मारता जा रहा है मारता रहा जा रहा है।
अच्छा।
बीबी बड़ी तंग आ गई,
हाँ।
तो अक के बोली कहती है भाई अगर गोभी को होश आ गई है तो एक किलो तोल दो।
हाँ अंकल ये भी एक बड़ा आलमिया है कि सब्जी पानी लगा लगा के इतनी भारी कर दी जाती है कि उसका वजन ज्यादा हो जाता है।
हाँ जी, ये वैसे मुझे एक बात बताओ, ये तमाम बरकी हालात को कंट्रोल करता है ये जो थैंक यू है, तो ये खवातीन की जो जुबान है उस पे भी काम करता है थोड़ा बहुत के पास।
अंकल खवातीन बिजली से नहीं चलती,
लेकिन खवातीन की जुबान तो बिजली की तरह ही चलती है।
नहीं अंकल बिजली की तरह नहीं चलती है क्योंकि लोड शेडिंग तो बहुत ज्यादा हो रही है।
बहरहाल जी, लोड शेडिंग की अलग बात है, ये थैंक यू डिवाइस वैसे है बहुत अच्छी, इससे हमारे बरकी हालात जो है ना वो जलने जुलने से बच जाएंगे।
जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ ही प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता है। इरम इमरान और अंकल दीवान को इजाजत दीजिए।
बच्चों की रात भर कर